सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। पहले चरण के तहत 17 अप्रैल को होने वाले 102 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष को घेर रहे हैं। पिछले दिनों मुंबई में विपक्षी इंडिया गठबंधन की रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शक्ति का रूपक प्रयोग किया था। इस रूपक के जरिए उन्होंने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला था। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने इसे हिंदू धर्म के अपमान से जोड़ते हुए तमिलनाडु की रैली में कहा,
मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने खुले आम घोषणा की है कि हिंदू धर्म की जिस शक्ति में आस्था होती है उन्हें इस शक्ति का विनाश करना है। हिंदू धर्म में शक्ति किसे कहते हैं, ये तमिलनाडु का हर व्यक्ति जानता है।
राहुल गांधी द्वारा शक्ति के रूपक का प्रयोग किए जाने पर बिफरी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद लोकतंत्र में आस्था का मुद्दा उठाते हुए कहते हैं,
जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती है तो देश की आस्था का सम्मान भी उस प्रक्रिया का एक अंग होता है। इस तरह से अगर आप देश की प्रमुख आस्था का अपमान करेंगे तो स्वाभाविक है ये विषय तो उठना चाहिए, क्यों नहीं उठना चाहिए। और फिर मैं यहीं पर आऊंगा, क्या राहुल गांधी किसी अन्य आस्था के मान बिंदुओं पर इस तरह से टिप्पणी कर सकते हैं, उनको करने दिया जाएगा क्या? हिंदू आस्था का अपमान करना इन लोगों की फितरत हो गई है और ये सिर्फ वोट बैंक के लिए होता है।
राहुल गांधी के बयान का बचाव करते हुए शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है।
राहुल गांधी ने कभी भी हिंदू शक्ति से लड़ने की बात नहीं की है। मोदी जी को झूठ बोलने की जो एक नशा है, आदत है, वो अब उतर जाएगी। राहुल गांधी जी ने एक शक्ति की बात की, वो शक्ति है धन शक्ति। धन शक्ति वो अघोरी शक्ति है, उसके बारे में राहुल गांधी बोल रहे हैं। और ऐसी अघोरी शक्ति को हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं।
कांग्रेस पार्टी भाजपा के द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों की बजाय अपने मुद्दों पर ज्यादा जोर दे रही है। बेरोजगारी से लेकर महिलाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को इस बारे में चर्चा की। 30 लाख नौकरी देने का वादा कर रही कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश इस बारे में कहते हैं,
30 लाख जो पोस्ट हैं वो सैंक्शनड पोस्ट हैं, वो भरे नहीं गए हैं। हमारा युवा न्याय का पहला गारंटी है भर्ती भरोसा। जो पोस्ट क्रिएट किए गए हैं सैंक्शन हो चुका है पर वो भरे नहीं गए हैं, ये 30 लाख नंबर है। केंद्र सरकार, पब्लिक सेक्टर कंपनियां, आंगनवाड़ी वर्कर सभी मिलाकर 30 लाख आते हैं। ये नए पोस्ट नहीं है, ये मौजूदा पोस्ट हैं जो पूरा भर्ती नहीं किया गया है।
आम आदमी पार्टी ने चुनाव के पहले अपने नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है ताकि विपक्ष को खत्म किया जा सके। पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने मंगलवार को भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा,
हम लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, ये तो एक बात है ही, लेकिन अब जो दृश्य सामने है उस दृश्य में सीबीआई या ईडी, अगर हम अभी की बात करें तो ईडी जैसी एजेंसी भी राजनीतिक संगठनों की तरह काम करने लगी है।
जांच एजेंसी पर खबरें प्लांट करने का आरोप लगाते हुए दिलीप पांडे कहते हैं,
ईडी ने मीडिया में खबरें प्लांट करने की कवायद शुरू करी, बेसलेस स्टेटमेंट को प्रेस रिलीज के तौर पे मीडिया में छपवाने की कोशिश करी। यह मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बेसलेस, आधारहीन, क्योंकि अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जिस 100 करोड़ रुपए का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की अपनी कोशिश को और बल देने का और ताकत देने का प्रयास किया।
मंगलवार को कांग्रेस पार्टी की बैठक में भी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठा। पार्टी नेता जयराम रमेश कहते हैं कि पिछले 10 सालों में जांच एजेंसियों की निष्पक्षता प्रभावित हुई है।
जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बीजेपी के फ्रंटल संस्थाएं बन गई हैं, ये निष्पक्ष संस्थाएं हैं और कुछ संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं, मिसाल के तौर से चीफ इलेक्शन कमीशन और सीएजी। तो संस्थाओं को सही ढंग से काम करने का पूरा अधिकार है, वो पिछले 10 साल वो अधिकार छीना गया है। वो सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे में काम कर रहे हैं और इसके बारे में काफ़ी लंबी चर्चा हुई है आज सुबह और हमारे न्यायपत्र में भी इसका जिक्र होगा।
बिहार में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए ने सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझा लिया है। 40 में से 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। 16 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को दी गई है। चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें आई हैं, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस का गुट खाली हाथ रहा है। सीटों के बंटवारे को नाइंसाफी बताते हुए पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। पशुपति पारस अब विपक्षी महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, इसके कयास लगने शुरू हो गए हैं। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।